शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बहुत ही सहज रीति से पुरुषार्थ के लिए बच्चों को युक्ति बताई है। बाबा ने कहा कि याद के लिए कई बार देखते हम, कई बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि याद नहीं रहती है, तो बाबा ने इतनी सहज युक्ति बताया है। बाबा ने कहा कि जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक याद कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात बाबा ने सेवा के क्षेत्र में कहा कि सेवा में सफलता नहीं मिलती है तो याद का जोहर नहीं है। बाबा ने कहा कि ज्ञान तलवार में याद का जोहर बहुत जरूरी है। फिर सारी दुनिया की हालत को बताते हुए बाबा ने कहा कि ये सारी दुनिया जो है क्या है, पूरी दुनिया हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर पतित रोगी बेकारी हो चुके हैं। बाबा आकर के इस हॉस्पिटल में सभी पतितों को बेकारियों को नई बेकारी बनाते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को स्मृति दिलाते हुए कहा कि तुम जब सचिव में थे तो बहुत सुखी थे, कोई भी प्रकार का दुख नहीं था, कोई भी चीज की कमी नहीं थी। तो बाबा आकर के रूहानी राजस्थान बनाते, सचिव का त्रेता का नाम आज बाबा ने दिया रूहानी राजस्थान। तभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 5 नवंबर 2025। मुंडली का मुख्य है मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। आज की दुनिया में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई न कोई बीमारी तो लगी हुई है। इसलिए बाबा को क्या कहना पड़ता है, मीठे बच्चे ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। आज का प्रश्न है कौन से स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाहट व दुख की लहर आ नहीं सकती है। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाहट व दुख की लहर आ नहीं सकती है। इसका उत्तर है अभी हम इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म होगा। आज की दुनिया में जो भी शरीर छोड़ता है इसी कलयुग की दुनिया में पुनर्जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं अभी हम इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राज्यों सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राज्य स्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर आ नहीं सकती। हम लोगों को तो और ज्यादा खुशी होनी चाहिए। हम कहाँ बैठे, वैसे ही राजस्थान में बैठे हैं, बाबा का घर भी राजस्थान में है। वैसे तो पूरे भारत के अंदर है ही, विदेश में भी है, लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं राजस्थान में बैठे हैं। तो बाबा कहती है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, रूहानी राजस्थान में। गीत में तुम्हें हो माता तुम्हें हो पिता और शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए लोगों को समझाने के लिए। बच्चों के लिए तो पता है ना कि हमारा माता पिता कौन है, नए नए आते तो उनको समझाना है, ऐसे भी नहीं, यहाँ सब समझदार ही है, नहीं बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं कि आप कितने बेसमझ बन गए थे, बाबा बताती है, बच्चों को याद भी आता है, अभी समझते हैं कि हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप आकर हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चा कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपने अपने समय से, कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर आदि बनते हैं, ये तो आत्मा को ही समझदार बनना, पढ़ाई शरीर के द्वारा करेंगे लेकिन पढ़ने वाली कौन है, ये तो आत्मा को ही समझदार बनाना है, पढ़ती भी आत्मा है शरीर के द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा आदि मिलती है वह अलग कारण के लिए शरीर निर्वाह अर्थ, वो कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देती है, जब ऐसा समय आया बहुत गरीबी थी तो क्रिश्चियंस ने उसका लाभ लिया, आए भारत में जो गरीब थे उनको पैसा आदि दे करके कन्वर्ट कर दिया, किसी ने किया थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए, क्योंकि उस समय ऐसी हालत थी तो उनके पास पैसा बहुत था, तो गरीबों को धीरे धीरे कन्विंस करके उनको कन्वर्ट कर दिया। तो बाबा कहते किस लिए, थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, ये है मुख्य बात। क्यों मुख्य बात है, बाबा कहते आत्म अभिमानी बनना ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है ही रोगियों की दुनिया। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो रोगी न बनता हो। आज शरीर स्वस्थ है, कल छोटी छोटी बीमारी लग जाती है, कभी कभी मन का रोग लग जाता है, तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी न बनता हो, कुछ न कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में काम करने वालों को रहेगा कि हम सारा हॉस्पिटल में काम करते हैं, सारा दिन बिजी रहते, लेकिन बाबा ने कहा सारी दुनिया हॉस्पिटल है तो तुम बच्चे सब रोगियों को ठीक करने वाले हो। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं, आयु भी बहुत कम होती जाती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चमड़ी में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, कोई बच्चे सिर्फ भारत के लिए सारी विश्व की गुप्त सेवा करते हैं गुप्त रीति से। मूल बात है बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे कितना भी समझाते हो लेकिन समझने वाले बाबा के बच्चे समझ जाएंगे, बाकी तो नहीं समझते ना। तो बाबा कहते हैं मूल बात है बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर और परलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार भी नहीं रखते, भले याद करते हैं लेकिन वो लगन वो प्यार से तो नहीं करते ना, उनसे प्यार भी नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापिस चलना है, जब तक वापिस चले तब तक क्या करना है, जब तक वापिस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देही अभिमान से देही अभिमानी बनो, बाबा से प्यार कब होगा, जब पहले देह अभिमान से देही अभिमानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो देही अभिमान से देही अभिमानी बनो तब तुम धारणा कर सकते हो। एक तो बाबा से प्यार, बाबा की याद, और तीसरा कि धारणा कैसे हो सकती है देही अभिमानी बनने से। और बाप को याद कर सकते हो, अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो बाबा क्या कहते हैं कोई काम के नहीं। क्यों? क्योंकि याद नहीं कर सकेंगे, सेवा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा को कहना पड़ता है कि अगर देही अभिमानी नहीं बनते कोई काम के नहीं। देही बाबा कहती है देही अभिमानी तो है, तुम समझते हो कि आत्म अभिमानी नहीं बनते तो बाप को याद भी नहीं करते। बाप को याद कर ही नहीं सकते, बाबा को कहना पड़ता है। तो हम वही हैं जो पहले थे, भल बाबा के बन गए, बाबा को पहचाना, बाबा को प्यार करना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते अगर देही अभिमानी नहीं बने तुम जैसे पहले थे वैसे हो, वही के वही हो जो जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, न कि रचता को याद करते। दुनिया वाले बाबा कहते हैं, आज एक और राजयुक्त बात बताई, बाबा ने कहा कि रचना पहले नहीं है, रचयिता पहले आता है। तो बाबा कहते न कि रचना को जानने की, गाया भी जाता है रचयिता और रचना का ज्ञान, ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहें। बाबा ने कहा नहीं, पहले है रचता का ज्ञान फिर है रचना, ऐसे नहीं कहना कि पहले रचना फिर रचता। तो बाबा कहती है तो ऐसे नहीं कि रचता को ज्ञान कहेंगे, ऐसे नहीं कि रचना को ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले पहले रचयिता वही बाप है। कहा भी जाता है ओ गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है, इसलिए वह सुप्रीम है। वो सुप्रीम क्यों है? क्योंकि वो देह नहीं है। बाबा सदा ही आत्म अभिमानी है, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ, इन्हें प्रवेश करता हूँ, इनको कन्वर्ट कर दे। कन्वर्ट क्या करेंगे? उनको आत्म अभिमानी बना देते। तो बाबा कहते हैं कि मैं इन्हें प्रवेश करता हूँ उनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देही अभिमानी थे, ये भी तो देही अभिमानी था, इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथारथ रीति याद कर। शिव बाबा ने बताया और ब्रह्मा बाबा ने कैसे बाबा को बहुत अच्छी तरह से यथारथ रीति याद किया। इनको भी कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझे यथारथ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं कि आत्मा अलग है, जीव आत्मा अलग है। तो बाबा ऐसे कहते हैं, वो समझते आत्मा अलग है जीव अलग है, ये तो समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि आत्मा जीव के द्वारा काम करती है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। अब बाबा बता रहे कैसे उनको बताना है कि जब आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाती है तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते, कौन सी बात समझाते कि अपने को आत्मा समझो। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर चक्कर लगाते, साकार बाबा के टाइम पर बाबा मिश्र कहते थे यहाँ तो बहुत शांति का वातावरण था, बच्चे जाते थे, बाबा कहते थे कि बगीचे में जाओ, कहीं भी जाओ, सैर करने जाओ, बिल्कुल एकांत में, किसी से बात नहीं करो, छत पे चले जाओ। अभी तो जाते हैं बीच बीच में, सुबह के टाइम तो कई जाते हैं लेकिन शांति से जाते हैं, कई फिर थोड़ा थोड़ा बातें भी करते हैं, तो बाबा कहते बिल्कुल शांति से जाओ। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा बताए सूरज पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, क्राइस्ट की याद में रहते हैं, घर में रहकर भी तो याद कर सकते हैं परंतु खास एकांत में जाते हैं, क्राइस्ट को याद करने करते समय और किसी की तरफ नहीं देखते। बहुत पक्के थे शुरू के टाइम और आजकल तो परिवर्तन होता जा रहा है, देह अभिमानी बन जाते, तो बाबा कहते हैं वो अपने याद में जाते हैं तो किसको, क्राइस्ट को याद करेंगे, वो कहीं नहीं देखेंगे। तो बाबा कहते क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते हुए नहीं, जो खास अच्छे अच्छे होते हैं सुनते हैं, हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। तो बाबा ने इस बात को भी स्पष्ट किया है, वो हेवन में तो है ही नहीं, हेवन में समझते हैं लेकिन जा नहीं सकते, समझते हैं कि वो हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे, ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया है, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे थे, सब जो भी क्रिश्चियन बने तो किसके बच्चे ठहरे, तो बाबा कहते हैं वैसे तो हैं बाबा के बच्चे, यह तो उसी एक के बच्चे हैं। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं है, क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। फांसी पर चढ़ाते किसको चढ़ाते, शरीर चढ़ता है और आत्मा तो निकल जाती, तो बाबा कहते आत्मा तो फांसी पर चढ़ती नहीं है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये भी कहना रॉन्ग हो जाता। अब सभी के सभी एक ही साथ इकट्ठे जाएंगे, उस समय वो गई तो बाबा कहते ये भी कहना रॉन्ग हो जाता है, वापिस को कैसे जाएंगे, हर एक को स्थापना कर फिर पालना भी जरूर करनी होती। बाबा ने एक राज पहले से बताया हुआ कि जो भी धर्म संस्थापक आते पहले स्थापना करते हैं, अपने धर्म के लोगों की पालना करते हैं, फिर नेक्स्ट पुनर्जन्म लेके फिर आके उनकी पालना करते, मकान को पोताई आदि कराई जाती है, ये भी तो पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके, अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। अब बाबा कहती है ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल, अब आप देखो दुनिया में कहेंगे बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, फलानी जगह बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन बाबा कहती ये सारी दुनिया जो है रोगियों की हॉस्पिटल है, सारा विश्व रोगियों का हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि सारा विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं, ऐसे नहीं यहाँ ही निरोगी बनेंगे, बाबा निरोगी बनाते हैं फिर निरोगी दुनिया स्थापन करते। बाबा कहते ऐसा नहीं कि सब यहाँ निरोगी बनेंगे, ऐसा नहीं यहाँ सब निरोगी बनेंगे, ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी बनते हैं, बात कहती है निरोगी होते ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी कोई हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया में हर एक को कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में निरोगी कोई हो नहीं सकता। बाबा बता रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वॉइसलेस रोगी नहीं होते। जो रोगी है वो विशेष है, जो वॉइसलेस है तो बाबा कहते वो रोगी होते नहीं है। वॉइसलेस रोगी नहीं होते, ये है ही संपूर्ण, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहती है इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते ही हो याद की यात्रा। निरोगी दुनिया में जाते हैं और यहाँ पर निरोगी बनते हैं याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपनी स्वीट होम, ये भी एक यात्रा है आत्मा की यात्रा। यहाँ से जाएंगे स्वीट होम, स्वीट होम से फिर आएंगे अपने घर, फिर चक्कर लगाते लगाते बाबा आकर के निरोगी बनाकर साथ ले जाएंगे। ये भी आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की वो यात्रा करते हैं। मंदिरों में जाने के लिए, देवताओं के पास जाने के लिए, बाबा कहते तुम्हारी यात्रा है बाप के पास जाने की, ये है स्पिरिचुअल यात्रा। हमारी यात्रा कौन सी है? ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सके तो बाबा कहते तुम भी नंबर वार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है ये समझाना भी बहुत सहज है। बाबा की याद में रहेंगे और बाबा को याद करेंगे तो समझाना भी सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी एक याद की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की, ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबर वार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है ये समझाना भी बहुत सहज है परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहते समझाते तो सब हैं लेकिन प्रभाव किसका पड़ेगा जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो, जो खुद ही नहीं होगा दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। बाबा ने कितना अच्छा बताया कि याद करेंगे तब तो उसका तीर लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस, तो बाबा कहते इसलिए पति को कितना याद करती है। क्राइस्ट भी बाबा कहते स्त्री पति को कितना याद करती है। क्राइस्ट भी बाप को याद करते थे परंतु उनको कोई लोग भी उस बाप को याद नहीं कर न जानते हैं। बाप को याद करते थे लेकिन लोग बाप को जानते ही नहीं हैं। तो बाबा कहती है बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान दे। भारतवासियों को भी बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। आज जब भारतवासी जहाँ भारत में भगवान आते उन लोगों को ही पता नहीं तो औरों को बाबा कहते कैसे मिल सकता है। भारतवासियों को ये बाप का पता नहीं तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। विलायत में भी यहाँ आती है योग सीखने के लिए, नहीं तो बाबा कहती है योग सीखने के लिए समूचे प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था। तो बाबा बता रहे कैसे बाहर दूर दूर से शुरू से लेकर के, वैसे देखा गया द्वापर से लेकर के शिक्षा के लिए भी बाहर से बहुत लोग आते थे। और परमात्मा की खोज के लिए भी भारत में बहुत आते थे। तो बाबा यही बताते हैं, तो बाबा कहते विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। सुनते हुए प्राचीन योग भगवान ने यहाँ सिखाया था, ये है भावना। बाप समझाती है सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कलप कलप आकर सिखलाता हूँ, वह भी एक ही बार, पूरे कलप के अंदर कभी भी नहीं, कलप कलप एक ही बार आकर सिखलाता हूँ, वह भी एक बार। मुख्य बात है अपने को आत्मीय समझ, बाप को याद करो, इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग, बाकी जो योग सिखाते हैं वो जिस्मानी है, शरीर का भी बताते हैं, लेकिन बाबा कहते बाबा को याद करना ये कौन सा योग है, ये रूहानी योग है, इसको रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग, ब्रह्म से योग रखते हैं, ये भी बाप तो नहीं है ना, ब्रह्म भी कोई बाप तो नहीं है ना। तो बाबा कहते वह भी बाप तो नहीं है, वह तो महातत्व है, रहने का स्थान है। तो राइट एक ही बाप है, बाबा ही एक है जो सत्य है, राइट है, तो राइट एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को ये भी नहीं पता कि बाप सत्य कैसा है। सत्य है बाबा, लेकिन बाबा को कहते हैं कि किसी को भी ये पता नहीं है कि बाप सत्य कैसे हैं। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठ खंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां पर रावण का राज्य नहीं होता, ना रावण का राज्य है, ना दुख है, ना झूठ है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां पर रावण का राज्य होता नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे। अब सतयुग को पूरा, सचखंड त्रेता को क्या कहेंगे, कला थोड़ी कम है, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी सतयुग की तरह है तो सही, लेकिन थोड़ा कला कम होती है ना। तो बाबा कहते हैं सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो, ना कलयुग में हो, बाबा कहते ना तुम सतयुग में हो, ना इधर हो ना उधर हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो। कहाँ बैठे हो, बाबा कहते तुम ना बैठे हो ना उधर हो ना इधर हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम यात्रा कर रहे हो, तुम ट्रैवल यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रेवल कर रही है शरीर में, बाबा की याद में बैठते आत्मा कहाँ कहाँ ट्रेवल करती, शरीर तो ये है ना, यही होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ट्रेवल कर रही है शरीर नहीं, आत्मा ट्रेवल कर रही है शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते, बाबा क्या बताते हैं कैसे ये स्पिरिचुअल यात्रा करनी, बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहां जाना है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कौन सी यात्रा, यहाँ से कहाँ जाएंगे परम धाम, और परम धाम से जाएंगे सच्चों के अंदर, यहाँ से वहां जाना है। तुमको ये सिखलाते हैं वो लोग, फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते, कोई कहाँ पहाड़ों पर जाने के लिए, कोई स्टार्स पर जाने के लिए, कोई मून पर जाने के लिए, कितनी ट्रेवलिंग करते रहते हैं, लेकिन मिलता क्या है, सिर्फ देख के आ जाते, कुछ करते तो नहीं ना, प्राप्ति तो नहीं होती ना। तो बाबा कहते वह लोग तो सिर्फ स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अब तुम जानती हो उन्हें कोई भी फायदा नहीं, इन चीजों से ही सारा विनाश हो रहा। वो तो राज जानते हैं, साइंस के द्वारा इतनी इन्वेंशन हुई है और साइंस के द्वारा ही विनाश होना है, इन चीजों से ही सारा विनाश होना है, बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है। इतनी मेहनत किया, इतना सब किया, क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है। बाबा कहते तुम जानती हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती हैं वे भविष्य में ही तुम्हारे काम में आएंगे, तुम्हारे लिए होंगे, सारा कुछ करेंगे, साइंस आपकी मदद करेगी, ये भविष्य में तुम्हारे लिए ही काम आती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए। बाबा पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए, लौकिक में भी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, टीचर का वैसे ही बहुत रिकॉर्ड रखते हैं। पहले जमाने में टीचर्स को तो इतना गुरु की तरह मानते थे, अभी तो कहाँ रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन कोई अच्छे होते तो उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं। तो बाबा कहती हैं अच्छे टीचर का वैसे भी बहुत रिकॉर्ड रखते हैं, बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं तो कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए। टीचर का फरमान है, टीचर फरमान करते हैं अच्छे रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाए। हर एक टीचर यही कहते है ना, लौकिक में भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, टीचर का फरमान है कि अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, ये लक्ष्मी नारायण विश्व की मालिक है ना, बहुत प्रजा भी मालिक है, सारा विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भी है, प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, जैसे अभी हम कहते हम भारतवासी हैं, तो बाबा कहते ऐसे प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम विश्व के मालिक हैं, हम मालिक हैं। बाबा कहती है गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, भारत में गरीब भी जो होगा तो क्या कहेगा, मैं भारत का हूँ, उसको पूछो उससे बड़े नशे से कहेगा, भारत में रहने वालों को नशा रहता, और विदेशी भी यही समझते हम पहले जन्म में भारत में थे फिर चले गए सेवा था, तो बाबा से पूछते थे, कई बार बाबा के पास आके विदेशी पूछते थे बाबा हम वहाँ पर क्यों हैं, बाबा ने कहा ओरिजिनली तो आप परम धाम क्यों, ओरिजिनली आप देवी देवता धर्म क्यों, लेकिन सेवा अर्थ वहाँ पर गए हुए, इसलिए यही सदा ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी हैं वो सेवा अर्थ है। तो बाबा ये बता रहे हैं गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और प्रजा उसमें कितना फर्क है, नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है, नॉलेज में भी होशियारी चाहिए। आप बाबा दो बातें बता रहे, एक है नॉलेज को रट लेना, एक है उसका यथार्थ मीनिंग, उसकी स्थिति में रहना। कई बार तो कोई लोग इतना ज्ञान ठोक ठोक के देते, बाबा इसलिए बताते हैं नॉलेज की भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, हेल्थ वेल्थ भी चाहिए, स्वर्ग ये सब है ना, बाप एम एंड ऑब्जेक्ट समझाते हैं, दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम एंड ऑब्जेक्ट होगी नहीं, ये थोड़ी समझते कि हमको देवता लक्ष्मी नारायण बनना है, दुनिया में तो कुछ नहीं समझते ना, तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम एंड ऑब्जेक्ट होगी नहीं, तो फिर से कहेंगे हम ये बनते, तुम्हारे से कोई भी पूछेगा तो नशे से कहते ना कि हम देवता बनते हैं, तो फिर से कहेंगे हम ये बनते, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी, ये तो अभी पंचायती राज्य है, पहले थे डबल ताजधारी फिर एक ताज, अभी नौ ताज, नौ ताज नहीं कोई भी ताज नहीं, पहले डबल से तार, द्वापर से सिंगल ताज, अभी कोई भी ताज नहीं है। तो बाबा कहते बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिरताज वाले राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुका दे। जब सीढ़ी का चित्र बन रहा था उसमें बाबा ने कहा ऐसा दिखाओ कि द्वापर युग में जो डबल ताज वाले हैं कैसे उनके सामने सिंगल ताज वाले माथा झुका रहे हैं। तो बाबा को समझाने के लिए बाबा कहते थे ये बहुत अच्छा है कि ये ऐसा इनको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे वो सिंगल ताज वाले बने। तो बाबा कहते हैं ये भी चित्र डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहती है मैं तो तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, वह अल्प काल के लिए और ये है 21 जन्मों की बात। पहले मुख्य बात है पावन बनने की, बुलाते भी है कि पतित से पावन बन आओ, पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, बुलाते भी है आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ, कभी नहीं कहेंगे कि हमको देवता बनाओ राजा बनाओ। तो पुकारते किस लिए, हे भगवान पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहते राजा बनाओ, लेकिन बाबा आकर के क्या करते हैं राजाओं का राजा बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं बुलाते हुए आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अगर तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास, अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जबकि समझती है कि अभी हम अपने घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। बाबा कहती खुशी में रहो कि अभी हम जाएंगे अपने घर, और अपने घर जाने की भी तो खुशी होती है ना, और फिर राजाई पद में जाएंगे। तो बाबा कहती फिर क्यों दुख होता है, क्यों मुरझाइश होती है, फिर मुरझाइश दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा जाएंगे अपने घर, फिर पुनः जन्म लेंगे नई दुनिया में, बच्चों को सताए खुशी क्यों नहीं रहती। बाबा को ये बहुत ख्याल चलता था बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती। माया का अपोजिशन बहुत है, क्यों खुशी नहीं रहती, क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो फिर हम अपनी राजधानी में चले जाए, जानते हो फिर हम अपनी राजधानी में चले जाएंगे। यहाँ तो भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं भारत के अंदर, कितने हर छोटे छोटे स्टेट के राजाएं थे, बहुत तरह के राजाएं थे। बाबा कहते वहां पर तो सभी अपने आप को क्या समझेंगे कि जैसे हमारा ही राज्य है, हर एक राजा ही फीलिंग करेगा। यहाँ तो भिन्न प्रकार के राजाएं हुए, अब फिर रूहानी राजस्थान बन रहा। राजस्थान में क्या हुआ, हर स्टेट के अंदर राजा होता है, कोई छोटा राजा कोई बड़ा राजा, तो यहाँ स्टेट का नाम ही राजस्थान था। बाबा ने कहा यहाँ तो भिन्न भिन्न राजाएं हुए, अब फिर बाबा आकर के क्या बनाते, रूहानी राजस्थान बनाते हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ भी नहीं समझते हैं, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई मुक्ति में हेवन में रहते, बाबा कहते ऐसा नहीं है कि बाबा स्वर्ग में रहते हो तो मुक्ति धाम में रहते, ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, नहीं वे तो रहते ही हैं, शांति धाम में अगर तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क भी बताना पड़े। लोग तो समझते ना कि परमात्मा स्वर्ग में रहते, बाबा कितने वहां नहीं रहते, बाबा तो अपने घर मुक्ति धाम में रहते हैं। तो बाबा कहते ये भी अंतर तुमको समझाना पड़े। बाबा रोज हर मुरली के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात पर समझाते थे जिसका बच्चों को औरों को स्पष्ट करके बताना है। तो बाबा कहते हैं ये फर्क बताना है, गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। बाबा कहाँ रहते हैं? गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर के पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हैं उनको वो लोग हेवन समझते, दूसरे धर्म वाले शांति धाम को ही हेवन समझते। बाबा कहते शांति धाम परमात्मा और आत्माओं के रहने का स्थान है, हेवन जो है वो तो सच्चों को कहा जाता है। तो बाबा कहते जिसको शांति धाम कहते हैं उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन में मुक्ति में जाने की नॉलेज जो बाप ही दे सकते। ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर से यह रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड फादर को याद करो। जो फांसी देने वाला हो तो क्या कहता है? भगवान को याद करो, गॉड को याद करो। तो उस भी समझता है कि भगवान को याद करना है, सारी लाइफ नहीं किया होगा लेकिन उस समय तो वो करता ही है। तो फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते ही नहीं, दुनिया नहीं जानते हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जरूर याद आता। कहने वाला ना गॉड को जानता, जिसको फांसी दी जाए वो भी नहीं जानता, तो लास्ट में उसको क्या याद आएगा? तो मित्र संबंधी याद आएंगे। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं। गाय भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ये भक्ति में गायन करते अंतकाल जो जिसका सिमरन करता है बार बार उस स्मृति से ही उसको प्राप्ति होती है। कोई नहीं कोई याद रहता जरूर है। तो बाबा कहते सतयुग में तो मोह जीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरे लेंगे, वहां याद करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो मरते टाइम उसको कहेंगे भगवान को याद करेगा करो, ऐसे बोलते हैं ना। कई तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं भगवान को याद करते करते फिर मित्र संबंधी को याद करते। तो बाबा कहते वहां शरीर छोड़ते टाइम कोई किसको याद ही नहीं करते हैं, वहां तो याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। वहां तो सब कुछ मिला हुआ है, सतयुग में तो सब कुछ प्राप्ति है ना। तो बाबा कहते वहां तो सब कुछ मिला हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है कौन सा? अब बाबा ने दूसरी बात कही, हमारा उद्देश्य है, तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धर्म का बनाना। हम कोई पूछते ना क्या उद्देश्य है, हम बताते ना हमारा उद्देश्य है देवी देवता पद को पाना, लेकिन दूसरा हमारा कर्तव्य क्या, उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को आस्तिक बनाना, धर्म का बनाना। अभी सब निधन के हैं, निधन के उनको कहते हैं जिनका कोई बड़ा नहीं होता है। हम धन का बन रहे, किसका बने? हमारा माता पिता है, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं भारतवासियों की पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये भी कोई नहीं जानता। कहा उनके 150 साल फिर धीरे धीरे कम होती गई, तो बाबा की आयु कम क्यों हुई है ये भी नहीं जानते, क्योंकि पति थे रोगी हैं। अब आयु क्यों कम हुई है ये भी नहीं जानते। तो बाबा कहती हैं ये भी कोई नहीं जानते, पहले पहले आयु बड़ी रहती थी, अब छोटी है, क्यों हुई है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, समझना और समझाना सो भी नंबर वार, समझ भी नंबर वार रहे हैं, समझाना भी नंबर वार है। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना सो भी नंबर वार। समझाना हरेक की अपनी अपनी होती है। क्यों अपनी अपनी होती है? बाबा ने कहा जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते। अब कितनी अच्छी बात कही, जैसी धारणा होगी तो वैसा ही समझाएंगे, तो जो जैसी धारणा करते ऐसी समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सुनेंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को जैसे प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा है, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इसी फरमान को पालन करना है। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है कि निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है कि जो निर्बल में बल भरने बल भरना। फिर से बताती हूँ, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उनका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार काम नहीं करती है, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्मा निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर उड़ते चलो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते चलो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विजयी स्थिति का अभ्यास करो। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन बाबा कहते वैसे तो अशरीरी अवस्था का प्रैक्टिस करते रहते, लेकिन जब जिस समय कोई बात सामने आए, कोई सर्विस की झंझट सामने हो, तो क्या करना है, तो वहां पर उस समय क्या करना है, तो बाबा बता रहे हैं कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियों को ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो गए। वैसे तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। सोचना और करना साथ साथ चले तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। दोस्त डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर लिविंग टुडे, रेज योर हैंड। अच्छा, अभी नाउ टर्न इज फॉर द डबल फॉरेनर्स गोइंग बैक टू द सर्विस प्लेसेस। सो फॉर द फोर डेज देयर वॉन्ट बी एनी अदर प्रोग्राम, बट द प्रोग्राम इज देयर, यू कैन एंजॉय मैक्सिमम इन बाबाज रिमेम्बरेंस एज वेल एज यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम बाबाज लव इन मधुबन वेन यू आर इन पांडवपुर। You are so fortunate that you are taking lot of benefit from Baba's soul, so you can enjoy Baba's company, but classes and other programs are not for 4 days. You can do, take benefit from, maximum benefit from Baba's love. Okay, those who are leaving today, raise your hand. Okay, you are going to your service place. Your home is Madhuban and going to सर्विस प्लेस। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, पांडवपुर डिस्पेंसरी की एक बहन जो कि अभी नर्स की सेवा पर है, उनका ब्राउन कलर का पर्स गुम हुआ है जिसमें उनके जरूरी कागज हैं, जिस किसी को मिले पांडवपुर डिस्पेंसरी में जमा करा दें, उनके क्रेडिट कार्ड कई चीजें हैं, इसलिए जिस किसी को मिले तो पांडवपुर की डिस्पेंसरी में जमा करा दें। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।